Let's pray. Our Father, our God, thank you for another evening together.
और हमारे बाप हमारे खुदा आज एक और शाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं.
As we come together again to consider your scriptures.
और आज चूंकि हम फिर से एक बार जमा हुए हैं ताकि तेरे कलाम को सीख सकें.
Would you open our hearts and our minds to receive your truth and to be blessed?
और खुदा अज़ीम हमारे दिल और दिमागों को खोल ताकि हम तेरे कलाम को कबूल कर सकें.
We thank you that we can come together like this and consider your word from under heaven on your earth.
और खुदा अज़ीम हम तेरे आज के कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम जमीन पर बैठकर तेरे आसमानी कलाम का वेट कर रहे हैं.
And we give you thanks for your word that binds us together with you today in Jesus' name.
और खुदा अज़ीम आज हम तेरे उस कलाम के लिए जो हम सबको जोड़े हुए है उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं.
आमीन.
और मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं. आमीन.
So today we come to a brief reflection on the start of Romans chapter 5.
और आज हम रोमियोस के 5 बाब में से तफसीली तौर पर सीखने की कोशिश करेंगे.
The first few verses in this chapter are perhaps some of the most important in all of Scripture.
और इसकी कुछ चंद इब्तदाई आयत हमें कलाम के अहम तरीन हिस्सों में से हम तसव्वुर कर सकते हैं.
I shared this with you when we first began our class months ago.
और मैंने आपके साथ इसका बयान किया था तकरीबन 4 हफ्ते पहले जब हमने इस क्लास का आगाज किया था.
That there are basically some divisions in the book of Romans, 4 major divisions in the book.
और इसमें कुछ तकसीम है रोमियो की किताब में से, और रोमियो की किताब में से 4 बड़ी तकसीमें हैं, इसके 4 बड़े हिस्से हैं.
In the first 4 chapters, which we've covered, we really have the gospel introduced by talking about sin and the need of righteousness.
और पहले जो 4 अबवाब हमने पढ़े हैं उसमें हमने तफसीली तौर पर गुनाह और रास्तबाजी के मुतल्लिक सीखा कि हमें उसकी जरूरत है.
Paul uses the law of Moses to explain sin from Adam all the way through to us.
और आदम और आदम से लेकर अब्राहम और यहोवा तक जो है हमने शरीयत को इस्तेमाल करके खुदा के रास्तबाजी को सीखने की कोशिश की.
In chapter 4, he explains that God saves sinners by his gracious covenant.
और हमने चौथे बाब में सीखा कि खुदा अपने अलाही फजल से अपने लोगों को बचाता है.
In chapters 5-7, we'll see some very clear things about exactly how more that gospel makes sense.
और 5-7 बाब तक हम कुछ तफसीली तौर पर सीखेंगे कि किस तरह खुदा यीशु ये करता है.
And this is where we're beginning here this evening.
और ये वो चीजें हैं जिसके मुतलक आज हम शाम सीखेंगे.
In chapters 8-11, when we get to them later on, we'll see more about the sovereign workings of the God who does this.
और फिर 8-11 बाब तक जब हम सीखेंगे तो हम देखेंगे कि खुदा किस तरीके से करता है, खुदा जो कुछ करता है.
And then to the close of the book, as Paul likes to do, he explains what we ought to do with all that he's taught us.
और फिर 12-16 बाब तक हम सीखेंगे कि पौलुस रसूल जिन चीजों से बाज रहने के मुतलक हमें सिखाता है.
He talks about us living out our faith.
और वो हमें हमारे ईमान के साथ जीने के मुतलक बताता है, और वो बताएगा कि हम ईमान के बगैर जिंदगी बसर कर रहे हैं.
And so that's where we are today. Again, if you'd come to me to with me to Romans chapter 5.
और यही वो वजूहात हैं जिस वजह से आज आप मेरे साथ हैं.
And with all that we've seen in chapters 1 to 4 in mind, 1 to 4 in mind, consider with me verse 1.
और जो कुछ हमने 1 से लेके 4 बाब तक आपने मेरे साथ सीखा, आज हम 5वें बाब की पहली आयत में इसके मुतलक जानने की बेहतर तौर पर कोशिश करेंगे.
Which says, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
और यहां लिखा है, पर जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें. आमीन.
I pray that just like me, you who have received grace and mercy in Christ.
और मैंने जो है वो खुदा की हमदो सुना की उसकी दुआ की जिस तरह आपने और आपके अजीजों कारब ने दुआ की तो आप खुदा के हजूर झुकते हैं.
That just for a moment you would take in how big the thought is that Paul just gave us.
और यहाँ एक मिनट में हम बेहतर तौर पर देखेंगे कि एक बड़ा नजरिया जो पौलुस रसूल हमें.
The whole world is dead in sin.
और तमाम की तमाम दुनिया गुनाह में मुर्दा हो चुकी है.
It was one sin of disobedience where our first parents, Adam and Eve, brought sin to us all.
और हम देखते हैं कि नाफरमानी वो पहला गुनाह है जो हमारे बाप आदम और हवा ने किया और खुदा से दूर हुए.
Every act of murder or theft or rape or lying that has ever happened in the world because of one sin, it all came in.
और हम देखते हैं कि गुनाह, चोरी, जनाकारी और दूसरे दिगर जितने भी गुनाह हैं वो सिर्फ एक गुनाह यानी नाफरमानी के वसीला से दुनिया में आए.
All of humanity, Jew, Gentile, we've seen this in Romans, floating in the ocean of sin.
और हम देखते हैं कि यहूदी, यूनानी और गैर अकवाम तमाम के तमाम गुनाह के सहरा में डूबते गए.
Sin is our problem and righteousness is our greatest need. To be reconciled to God is our greatest need.
और गुनाह हमारी परेशानी है, हमारा मसला है और रास्तबाजी हमें खुदा के साथ सुलह रखने के लिए जरूरी है.
And look at what he says again in verse 1. We have been justified by faith and have peace with God.
और यहाँ हम देखते हैं लिखा है कि हम ईमान से रास्तबाज ठहरे और हमारे पास खुदा का इत्मीनान है.
The sin problem has been removed by the gospel.
और हम देखते हैं कि गुनाह के जो मसाइल हैं वो अंजील के जरिया से हल होते हैं.
The lack of peace with God was our problem, but now we have peace with him.
और हम देखते हैं कि गुनाह की वजह से हमारे अंदर सुकून का फिकदान था जो अंजील के वसीला से हम तक पहुंच चुका है.
This is huge.
और ये बड़ा ही शानदार काम है.
This peace is not possible. It's not under threat. There's no chance that God is going to raise the sword again against me.
और हम देखते हैं कि अब ये मौका और चांस नहीं है कि खुदा फिर से अपनी तलवार को मुझ पर नाज़िल करे.
Through the cross of Jesus Christ, God has brought me to be at peace with himself.
और सलीब के जरिया से खुदावंद यीशु मसीह इत्मीनान को हम तक लेके आए.
to those who believe in what we've seen in Romans 4, in the resurrection of Jesus Christ.
और जिस चीज पर हम ईमान रखते हैं और जो हमने रोमियो उसके चार बाब में मसीह के जी उठने के मुतलक सीखा.
To those who put their trust in Jesus to save them from their sin.
और जो शख्स इस बात पर ईमान रखते हैं कि मसीह के वसीला से खुदा उनके गुनाहों को माफ कर सकता है.
All those who do that have peace with God.
और तमाम के तमाम जो ये करते हैं उनके पास खुदा का इत्मीनान और फजल है.
Notice that the text does not say, one day, hopefully, we will have peace with God. It says, we have peace with God now.
और हम अगर खुदा के कलाम को गौर से देखें, तो यहां ये नहीं लिखा कि एक दिन हमारे पास इत्मीनान होगा और शायद हमारे पास इत्मीनान हो, बल्कि ये लिखा है कि हमारे पास अभी इसी वक्त इत्मीनान है, खुदा का फजल है.
If we have been justified, we have peace.
और अगर हम रास्तबाज़ ठहराए गए हैं, तो हमारे पास सुकून है, उसका इत्मीनान है.
This verse, Romans chapter 5, verse 1 and verse 2, summarize all these first four chapters of this book.
और ये पांचवें बाब की पहली आयत रोमियो के चार अबवाब का हाता करती है.
Let's look at verse 2.
और आइए दूसरी आयत को देखें.
By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God.
और लिखा है जिसके वसीला से ईमान के स्वाब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई है जिस पर कायम है और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें.
God has made peace with man through the cross.
और खुदा ने अपने इत्मीनान को सलीब के जरिए से इंसान पर नाज़िल किया.
To those who repent of their sin and believe in Jesus, they have peace and stand in faith in grace today.
और जो अशखास खुदा के खुदा पर और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उनके पास निजात है और वो खुदा के इत्मीनान में उसकी निजात में खड़े हैं.
In another place in 2 Corinthians chapter 5, I'd like to read you a few verses.
और एक और जगह दूसरा करिन्थियों उसके 5 बाब उसकी 19 से लेके चंद आयत में हम इसके मुतलक पढ़ेंगे.
Let's start in verse 19.
और आइए 19 आयत से इसका आगाज करें.
To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation.
और लिखा है मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तफसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया.
Verse 20, now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God.
और लिखा है, बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है कि हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो.
Notice the one who does the work in verse 21.
और यहां देखें कि वो शख्स जिसने हमारे लिए काम किया उसकी मार्फत हम गौर करें.
He, that is God, he hath made him sin, made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him.
और लिखा है जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाहगार ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं.
God did the work. God the Father made God the Son, who knew no sin, to be sin.
और हम देखते हैं कि खुदा बाप ने खुदा बेटे को जो गुनाह से नवाकिफ था उसे गुनाहगार बनाया ताकि हम उसमें निजात को पा सके.
Jesus never sinned, but the sin of all of God's people was imputed to him on the cross.
और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया लेकिन सलीब पर तमाम दुनिया के गुनाह उस पर लाद दिए गए, उस पर ढाल दिए गए.
Jesus was a blood sacrifice for sin for his people.
और खुदावंद यीशु मसीह लोगों के लिए एक खून बेऐब बर्रे के तौर पर जाहिर हुआ.
On the Day of Atonement, when the high priest in Israel would pronounce sin on the animal and place his hands on the animal.
और हम देखते हैं कि इसराइल में साल के एक दिन जब सरदार काहिन और जो उस वक्त का खादम जो खुदा की खिदमत का काम करने वाला होता वो एक बर्रे पर अपने हाथ को रख कर दुआ करता.
This act was symbolic of the coming of Jesus on the cross.
और ये अमल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के आने की मार्फत निशानदेही करता था.
The sins of God's people of the Hebrews was imputed symbolically to the animal.
और अब्रानियों के गुनाह जो है वो अलामती तौर पर उस बर्रे के ऊपर डाल दिए जाते जो उस वक्त कुर्बान होता था.
And the blood was shed.
और खून जो वो बहाते थे.
On the cross, the triune God imputes the sin of God's people onto the head of God the Son.
और जिस तरीके से बर्रे पर उस अब्रानियों के गुनाहों को डाला जाता था उसी तरह उस वक्त के उस दौर के लोगों ने जो तीन सफाती खुदा जो तीन मुख्तलिफ सूरतों में जाहिर होने वाला खुदा था उसके सर पर दुनिया के गुनाह को डाल दिया गया.
His blood is shed, his life is given, sin imputed to him.
और उसकी गुनाह उस पर डाला गया, उसकी जिंदगी उससे छीन ली गई और लोगों के गुनाहों को उस पर लाद दिया गया.
But this is how God reconciles man to himself by imputing the righteousness of Jesus back to the sinner.
और ये हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा खुद अपने आप को बेटे की सूरत में जाहिर करके हमारे साथ सुलह करता है.
You must understand this.
और हमें जरूर है कि इसके मुतल्लक जाने समझे.
We as Christians must understand this.
और हम जो मसीही हैं इसको समझने से कासर हैं.
There is a double or there is a two-part imputation.
और यहां हम देखते हैं कि दो हिस्से हैं इसको जो है वो इनको डालने के लिए.
My sin, my breaking of the commandments of God is imputed to Jesus.
और मेरा गुनाह खुदा के हुक्मों से इनहराफी और उसके हुक्मों को तोड़ने वाला गुनाह जो है.
That's one imputation.
और ये वो पहली जो चीज थी जो उस पर डाली गई.
And then his righteousness is imputed back to me. That's the second imputation.
खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी जो है वो मेरे ऊपर डाली गई.
This is what it means to believe in the death and resurrection of Jesus.
और ये वो चीज है जो खुदावंद यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठने की मार्फत बताती है.
That this is the way God has chosen to reconcile sinful man to himself, to make peace.
और ये वो तरीका है जिसमें खुदा गुनाहगार अशखास को अपने साथ मिलाप करने के लिए अपने साथ छोड़ने के लिए काम ये काम करता है
through the blood through the life of Jesus through the cross
और खुदावंद यीशु मसीह के लहू और उसकी जिंदगी के वसीला से जो सलीब के जरिया से हम पर जाहिर हुई वो जाहिर करता है कि वो हमारे लिए किस तरह नजात पैदा करता है
Jesus's sacrifice on the cross did what all of those animal sacrifices before him could never have done.
और खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर मसलूबियत उससे पहले मसलूब होने वाले उन तमाम जानवरों की अलामत को जाहिर करती है कि वो तमाम के गुनाहों के लिए मरा।
He forever did away with those sacrifices by his one superior sacrifice.
और तमाम की तमाम ये छोटी कुर्बानियां ये दुनियावी जानवरों की कुर्बानियां एक बहुत बड़ी कुर्बानी जो बेऐब बर्रे के थी उसके वसीला से खत्म हुई
This is all the work of God, all the plan of God. This is how God chose to do it.
और ये वो तमाम खुदा के मंसूबे, खुदा का काम था जो उसने दुनिया के लिए किया.
Those are fathers who came before Jesus was incarnate in Israel.
और हमसे पहले जो उसके लोग जो हमारे बाप खुदा के पास इसराइल के लोग खुदा के पास गए
They obeyed God, they obeyed his commandments, but they were looking ahead to the coming of Jesus.
और वो खुदा के हुक्मों पर अमल करते थे, वो खुदा के कानून को मानते थे, लेकिन वो आने वाले मसीह की तलाश में थे.
All of the law, all of the prophets looked forward to the coming of the Messiah.
और तमाम की तमाम शरीयत और तमाम अंबिया जो हैं वो मसीहा यानी के मसीहा के इंतजार में थे
He came, he made sense of the law, he made sense of the promises.
और उन्होंने शरीयत का फहम पैदा किया और खुदा की हिकमत को जाहिर किया
He fulfilled all the law which he loved And he instituted the grace in which we now stand.
और उन्होंने खुदा के फजल को और उसके उस फजल को जो हम पर हुआ है उसको समझाया हम पर दाहिर किया.
To all those who repent of their sin and believe in him, they stand with Christ, with God in peace.
और जिन लोगों ने ईमान रखा जिन लोगों ने उसे कबूल किया वो खुदा बाप बेटे और उसकी सलीब को जानने वाले उसके इत्मीनान में खड़े हैं
Being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
और उस पर ईमान रखने वाले मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से इत्मीनान को पाते हैं
We have access, here's the good news, too. We have access to God by faith.
और हमारे पास जो ईमान रखते हैं एक खुशखबरी है और वो ये है कि ईमान के वसीला से हमारी खुदा तक रसाई हो सकती है.
Think of the righteousness of Jesus like a shirt that covers you.
और फर्ज करें कि खुदा का फजल इस शर्ट की तरह इस कमीज की तरह है जो आपके ऊपर है
Like a righteous robe that covers us from sin
और ये वो खुदा का फजल और इत्मीनान है जो हमारे गुनाहों को ढांपता है
It is a clean robe it is a pure robe
और ये एक साफ हिफाजती बंद है जो हमें महफूज रखता है
All those who wear it are welcome to stay in the wedding feast
और तमाम जो इसको पहनते हैं उनके लिए एक दावतनामा है कि वो इत्मीनान की दावत उनके लिए है
It is God's good pleasure to give that robe to all who believe
और ये खुदा का वो खूबसूरत इत्मीनान और मसरत है जो वो अपने लोगों को देता है.
The robe cleanses us and allows us to come into the presence of the Almighty.
और ये वो खुदा का फजल और इत्मीनान है जो खुदाए असीम की तरफ से हम पर होता है.
This being who has not revealed himself in full yet to any of us.
और ये वो खुदा का काम है जो वो हम पर जाहिर नहीं उसने किया.
Even in Jesus Christ, we await something.
और अब यहां तक के मसीह में होने के बावजूद हम कुछ चीजों का इंतजार में हैं.
We stand in faith with access to God in grace.
और हम खुदा के फजल में खड़े हैं उसके इत्मीनान को ईमान के साथ पाने के लिए.
But look at the end of verse 2 again with me, and rejoice in hope of the glory of God.
और इसके आखिर में लिखा है और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें.
We wait for something.
और हम कुछ चीजों का इंतजार कर रहे हैं.
The great promise of Jesus in the Sermon on the Mount is, blessed are those who are pure in heart, they will see God.
और खुदा का वो खूबसूरत वादा जो उसने अपने पहाड़ी वाहज में किया कि मुबारक हैं वो लोग जो साफ दिल रखते हैं, जिनके दिल साफ हैं वो खुदा को देखेंगे.
Jesus is not finished with all that he came to do. He will come again.
और खुदा जो है वो एक मर्तबा फिर से आएगा और वो तमाम काम जो उसने पहले किए हैं वो उनके लिए हरगिज नहीं आएगा.
Just as sure as it is that he came once, we know he will come again.
और चूंकि वो पहली मर्तबा आ चुका है, हम उम्मीद हैं कि वो अपने वादों पर सच्चा है और वो फिर से आएगा.
This is what it means to presently today stand in grace, but hope in the glory of God.
और ये वो उम्मीद है जो खुदा के फजल में खड़े रहने के बाद हमें खुदा के जलाल की उम्मीद को हम पर जाहिर करती है.
This is a big part of what it means. We are saved now today, but we will fully be saved in another day to come.
और हम इसी वक्त मुकम्मल तौर पर निजात पा चुके हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि हमारे पास एक और कमाल की निजात होगी.
Saved not just from the penalty of our sin, which we have already been, but one day we will be saved from even the presence of sin.
और यहाँ एक दिन एक वक्त ये है कि हमारे पास जो गुनाहों की कसरत है, हम ना सिर्फ उससे महफूज हैं बल्कि एक दिन आएगा जब हम गुनाह के नुक्ता इनकाकाज से भी दूर हो जाएंगे.
Hope with God works like this.
और उम्मीद करते हैं कि खुदा इस तरीके से काम करता है.
If you have someone in your life that you can really trust when they promise you something, like, you know, if they tell you they're going to do something, they're going to do it.
और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो जिस पर आप कमाल का इत्माद करते हैं, तो आप पूर्ण उम्मीद होते हैं कि जो कुछ वो कहता है वो जरूर करेगा.
And they give you a promise.
और वो आपको एक वादा देता है.
This is how hope works. If you trust the one who promised you, you know that what they said, they will do it.
और जिस तरह हम ये काम करते हैं, हमें इस बात पर ईमान रखना है कि जो ये वादे करता है वो इनको पूरा करने की भी कुदरत रखता है.
God has promised you that you will inherit the earth through Christ, that you'll see him face to face.
और खुदा हमारे साथ ये वादा करता है कि हम एक दिन जो है वो उसके आमने सामने उसको देखेंगे.
His glory will be revealed in full one day.
और उसका जलाल एक दिन मुकम्मल सूरत में हम पर जाहिर होगा.
Can we who've been saved by his blood rejoice in that coming day?
और हम जो उसके खून में निजात पा चुके हैं हम उसके साथ एक दिन होंगे.
Lord willing, we come together next week. We'll see that this life is filled with sufferings and trials.
और उम्मीद करते हैं कि हम आने वाले हफ्ता नहीं बल्कि उसके बाद जो है वो फिर से मिले और देखें कि हमारी जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई है.
And so this peace with God that we have, this grace with God that we have, must go beyond all of that.
और फिर हम देखें कि हमारी जिंदगी मुश्किलात से भरी है लेकिन खुदा का इत्मीनान खुदा का फजल इन तमाम चीजों से अफजल और बड़ा है.
And this is what we see on the cross, where God meets man in suffering, in death. That's where we meet with him.
और फिर हम देखते हैं कि खुदा अपने लोगों से उनकी मुश्किलात में उनकी मौत में उनके उनसे हम उनसे मुलाकात करता है.
But the Bible says that Jesus, after death, rose again and went as our forerunner somewhere where he is bringing us.
Yes.
But the Bible says that after his resurrection, Jesus went somewhere where as a forerunner, he went before us to bring us there.
और फिर बाइबल ये बताती है कि वो हमसे पहले आसमान किसी एक ऐसी जगह पर चला गया है जहां वो हमारे लिए मकान तैयार कर रहा है और हम भी उसके साथ होंगे.
He has promised us that.
और उसने हमारे साथ इसका वादा किया है.
And so as you study all of Romans so far, have you seen God fulfill his promises through Israel?
और अगर आपने मेरे साथ कुछ पिछले अबवाब को गौर किया है और आप रोमियो को पढ़ चुके हैं तो आप देखेंगे कि खुदा इसराइलियों के साथ जो वादे करता है उनको पूरा करता है. क्या आपने खुदा के कलाम को पढ़ा है?
Have you seen with me why Paul spoke about the fall and sin and Abraham and Moses?
क्या आपने मेरे साथ देखा कि क्यों अब्राहम और दूसरे अंबिया खुद गुनाह में गिरे?
Why he speaks to Jew and Gentile all under sin? And why he speaks to Jew and Gentile who are all under sin? Can you hear me, brother?
क्यों हम देखते हैं यहूदी गैर अकवाम जो हैं वो गुनाह में घिरे हुए हैं?
It is to make a glorious point that all sinners who are saved by the grace of God.
और यहां हमारे लिए एक बड़ा ही अहम और खुशखबरी का काम है और वो ये है कि खुदा तमाम गुनहगारों को अपने फजल से निजात बख्शता है.
And that when we pray in Jesus' name today, we are praying the name above all names.
और जब हम आज मसीह खुदा के नाम में खुदावंद के नाम में दुआ करते हैं वो तो वो तमाम नामों से बड़ा नाम है.
We have been reconciled to God by our faith.
और हमारी खुदा के साथ सुलह हमारे ईमान के वसीला से हुई है.
And when we think this out, we see that it's the faithfulness of God that has saved us.
और जब हम इसको देखते हैं तो हम गौर करते हैं कि ये खुदा की वो ईमानदारी है जिसके वसीला से वो हमारे साथ अपने फजल को जाहिर करता है.
And I pray that you understand that when you say that you are justified by faith, you're saying, I'm justified by the cross, which is something I could not have done.
और जब आप इसको समझेंगे तो फिर आप इस बात का इकरार करेंगे कि कुछ ऐसी चीजें जिनका मुझे इल्म नहीं था मैंने उनको खुदा के ईमान में पाया.
I could not have brought about peace between God and myself. I could not have done it.
और मैंने जो है वो इन चीजों को पहले अपने तौर पर नहीं कर सकता था.
My sin is why we didn't have peace.
और मेरे yes.
My sin is why we did not have peace, me and God.
और मेरे गुनाह थे जिसकी वजह से मेरे और खुदा के दरमियान और खुदा की तरफ से मेरे ऊपर इत्मीनान नहीं था.
He had to make peace with Abraham.
और उसने मुझे अब्राहम के साथ इत्मीनान बख्शा.
God had to cover Adam and Eve from their sin, their nakedness.
और खुदा ने आदम और हवा को उनके गुनाहों से बचाया और उनकी नंगेपन की हालत को अपने फजल से ढांपा.
God had to cover Moses' sin and David's sin. God had to do it.
और खुदा ने मूसा और दाऊद के गुनाहों को ढांपा.
And he had to do it with me too.
और उसने मेरे साथ भी ये सब कुछ किया.
And it's the blood of Christ that has made all the peace between God and man.
और ये बर्रे का वो लहू है जिसने मेरे और आपके गुनाहों को डांप लिया.
God did it. Amen.
और खुदा ने ये सब कुछ किया. आमीन.
This is good news, brothers and sisters. Really good news.
और बहनों भाइयों ये खुशी की खबर है.
Repent and believe the gospel.
और तौबा करें और खुदा की अंजील पर ईमान रखें.
Receive this peace, this offering that God has made for you and for me, for our sin. Receive it.
और खुदा के इस फजल और इत्मीनान को इस पेशकश को कबूल करें.
Receive it every day. Preach it to yourself every day.
और इसको हर दिन कबूल करें और हर दिन खुदा की तालीमात पर अमल करें.
And when we do that, we see more and more about how we have been justified.
और जब हम रोज ज्यादा से ज्यादा ऐसा करेंगे तो हम बेहतर तौर पर जानेंगे कि हम किस तरह रास्तबाज ठहरे.
Why we have laid down our weapons against God and come into peace with him.
और क्यों हम खुदा के साथ जुड़ गए और खुदा के फजल को अपनी जिंदगियों में देखा.
I'll finish with this. There is no other religion like Christianity.
और हम देखते हैं कि कोई ऐसा मजहब नहीं जो मसीहत की तरह हो.
Because there is no truth outside of Christianity.
क्योंकि मसीहत के बाहर कोई सच्चाई नहीं है.
All world religions will teach you how you can try to save yourself.
और तमाम मज़ाहिब ये बताते हैं कि कौन से वो काम हैं जो अमाल करके आप अपने आप को बचा सकते हैं.
They have no way to teach about a God who reconciles sinners to himself by his grace.
और कोई ऐसा मजहब नहीं है जो इस बात की तलकीन करे कि खुदा गुनहगारों को खुद ये मौका देता है और अपने साथ मिलाप करवाता है ताकि वो निजात पा सके.
But when we preach Christ, we preach that men would be reconciled to God through him.
और जब हम अंजील की मुनादी करते हैं तो फिर हम इस बात की मुनादी करते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसके वसीला से हमारा मिलाप खुदा के साथ हुआ.
And there's no greater treasure for you and me that we could ever store or get for ourselves than sharing this gospel.
और हमारे लिए इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है आपके और मेरे के लिए कि हम इन चीजों को अपनी जिंदगियों में रखें.
And so God bless you. Take this message to your families. Take it to your friends.
आप सबको जो है वो बरकत दे इस पैगाम को अपनी जिंदगियों में रखें.
And when they don't receive you, just remember, you're not a better evangelist than Jesus.
और आप इससे बड़े बेहतरीन मुबशर नहीं हो सकते अगर आप उसकी बुनियादी से कासर हैं.
Not everybody received him either.
और हर शख्स जो है वो उसको कबूल भी नहीं करता.
But to those who did, they were imputed this righteousness.
لیکن جو اسے قبول کرتے ہیں وہ خدا کی اس راستبازی کو اپنے اوپر لیتے ہیں.
God bless you who believe and understand these great truths, such as what we see in the first two verses of Romans 5.
اور خدا کا فضل اور اطمینان ان لوگوں پر ہو جو خدا کے کلام کو سنتے اور اس کی سمجھ بوجھ اور اس کا فہم رکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں پر جو ہم نے رومیوں اس کے پانچ باب کی پہلی دو آیات میں سیکھی ہیں.
It has summarized all of the first four chapters of Romans.
اور رومیو پانچ باب کی پہلی دو آیات اس کے پچھلے تمام چار ابواب کا احاطہ کرتی ہے.
Let's pray and we'll close today.